أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ہم وطنوں، آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی سنجیدہ موضوع لے کر حاضر خدمت ہوں، جس کا تعلق ہماری سماجیات سے، ہمارے مستقبل سے، اور ہمارے مکتب کی در حقیقت تاریخ اور مستقبل سے ہے، اور وہ ہے 6 جولائی کا دن. 6 جولائی اس لیے اہمیت کی حامل ہے کہ اس تاریخ کو ملت تشیع پاکستان نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی، کہ جس کے دور رس نتائج اس زمانے کے لحاظ سے، اس کے مستقبل پر، یعنی اس دور میں اور اس کے بعد آنے والے زمانے میں جو مستقبل ہے اس میں نظر آ رہے ہیں. اور 6 جولائی در حقیقت ایک ایسا قومی دن ہے ملت تشیع کا کہ جس کو باقی رہنا چاہیے. اور میرے سننے والوں میں سے جو نوجوان ہیں، جن کی عمر 20 سال 25 سال سے کم ہے، یقیناً وہ اس سے کم حق واقف نہیں ہیں. کیوں ہم 6 جولائی کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت دشمنان دین، دشمنان پاکستان و دشمنان مکتب تشیع پوری دنیا میں مکتب تشیع کی کامیابیوں اور فتح و ظفر کے جھنڈے گڑنے کی وجہ سے، عالمی سامراج کی شکست سے خوف زدہ ہو کر، ہمارا دشمن در حقیقت اس دن کی حقیقت اور حقانیت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ دن اس لیے قابل اہمیت ہے کہ اس میں ہماری فتح و ظفر ہے، اس میں ہماری جیت ہے، اس میں ہمارے مکتب کا مستقبل، کہ جو آج جسے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ مستقبل 1980 کی نسبت، ظاہر سی بات ہے کہ تقریباً 40 سال ہونے کو آ رہے ہیں، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور اس کے بعد جو آئندہ آنے والے زمانہ ہے اس میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا. لہذا دشمن کوشش یہ کر رہا ہے کہ ملت تشیع کو اس تحریک کی بنا پر کہ جو 1980 میں چلائی گئی اس کی سزا دے. آج زندگی میں یاد رکھے گا، زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو بیدار ہوتی ہیں، باشعور ہوتی ہیں، بضمیر ہوتی ہیں، اپنے قائدین کے پیچھے چلتی ہیں، ان کے قائدین بیدار ہوتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں، انہیں مسلسل اپ ڈیٹ رکھتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، میدان عمل میں حاضر رہتے ہیں، اور کسی بھی لمحے ان کو تنہا نہیں چھوڑتے. یہ قوم اور ان کے رہنما اور رہبر اور ان کے قائدین در حقیقت ایک ایسا رشتہ بناتے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہتا ہے، کہ قوم رہنما کے ساتھ اور رہنما اور رہبر قوم کے ساتھ ہیں. اور یقیناً قوموں کی زندگی سال دو سال کی نہیں، کئی دہائیوں پر مشتمل ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 1980 کے جو در حقیقت حالات تھے، اس میں کامیابی کی سزا جو ہے وہ ملت تشیع کو آج دی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے دی جا رہی ہے اس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں. تہتر کا آئین بنا، اب یہ خود ایک بحث ہے، 73 کا آئین اور اس سے پہلے جتنے بھی مارشاء اللہ لگے، آمریتیں آئیں، ڈکٹیٹر آئے، ان کے پیچھے کیا مقاصد تھے، میں ابھی فی الحال اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن مطالعہ پاکستان کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، جتنے بھی مارشاء اللہ لگے ہیں ان سب کی اگر کڑیاں ملائی جائیں تو ایک پزل ہمارے سامنے آ جائے گا، کہ جس میں ہم حقیقت کو تلاش کر سکتے ہیں. چنانچہ 73 کے آئین کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت ملی اور انہوں نے بہت سارے کام ایسے کی جو قومی مفاد میں تھے، اور ان کو ایک عامر نے آ کر हुकूमत से और महरूम कर दिया, उनको जेल में डाल दिया। और यूँ 77 के बाद जो है वो हालात कशीदा होते चले गए और यूँ हमारा एक बदतरीन दौर आमरियत का, कि जो बज़ाहिर एक अस्करी लिबास पहनने वाला शख्स था, उसके हाथों शुरू होता है और बदतरीन दौर जो है वो अपनी मनहूसियत के साथ पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़ने शुरू कर देता है। और यही वो वक्त था कि जब पाकिस्तान को इस अस्करी आमिर ने दर हकीकत इतना पीछे कर दिया कि जिसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। और यही वजह है कि अपने इख्तदार को तूल देने के लिए इस आमिर ने दर हकीकत निज़ाम मुस्तफ़ा का ढोंग रचाया और निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और उसमें हमारे बहुत से बरादरान अहल सुन्नत और बहुत सी इस्लामी जमातें, मज़हबी जमातें जो हैं वो इस ज़िया आमिर के हाथों बेवकूफ़ बनी और उन्हें खुल कर इस्तेमाल किए गए निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए। वो निज़ाम मुस्तफ़ा क्या था ये एक अलग बहस है, लेकिन पता है कि ज़ियाउल हक़ का निज़ाम मुस्तफ़ा क्या था। और आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में दर हकीकत सऊदी काश्तकारी की जाने लगी। इस्लामी इनकलाब ईरान में आ चुका था, उसके असरात को रोकने के लिए क्वेटा में कौम परस्ती का बीज बोया गया। दूसरी तरफ लिसानी और सूबाई और कौमियत के नाम पर तंजीमों को वजूद बख्शा गया, फ़िरकावारियत को हवा दी गई। अलगर्ज़ ये कि बहुत सारे महाज़ों पर इस ज़िया आमिर ने काम शुरू किया। चुनाचा शियों को और मिल्लत तशय्यो को ज़बरदस्ती उस निज़ाम मुस्तफ़ा की आड़ में दीवार से लगाया जाने लगा। ऐसे वक्त में अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब आलाल्लाहु मुकामहू खड़े होते हैं और आप एक एजिटेशन का ऐलान करते हैं और मुज़ाकरात की बात होती है, शिया कौम को जमा किया जाता है अपने कायदे मोहतरम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए। ये तमाम अफराद जमा होते हैं, जिसमें शोरकोट के एक हमारे मुजाहिद थे जिनका खून बहा और उन्होंने जाम शहादत नोश किया और यूँ लोगों में एक वलवला पैदा हुआ, गम गुस्से की लहर पैदा हुई। और फिर पूरी कौम ने देखा कि किस तरीके से 6 जुलाई 1980 को अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब आलाल्लाह मकामहू की क़यादत में एक वफ़ तश्कील पाता है और फिर वो जाके हुकूमत से मुज़ाकरात करता है, कि जिन्हें बहुत सारी कामयाबियाँ हमें हासिल हुई हैं। उनमें दो बड़ी कामयाबी जो है वो मैं आपको यहाँ ज़िक्र करता हूँ कि फ़िक्ह जाफ़रिया को दर हकीकत एक लॉ की हैसियत से, एक फ़िक़ा की हैसियत से तस्लीम किया गया, ताकि जो कानून साजी की जा रही है उसमें फ़िक्ह जाफ़रिया के लिए एक गुंजाइश रखी जाए, कि जिस तरह चारों फ़िक्ह अहले सुन्नत के लिए गुंजाइश रखी गई है उसी तरीक़े से फ़िक्ह जाफ़र के लिए गुंजाइश रखी जाए, ताकि उनके जो शरई मामलात हैं उनकी फ़िक्ह के मुताबिक अंजाम पाएँ। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि मुसलम तौर पर मकतब तशय्यो में तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम में और कुरानी तालीमात की रोशनी में पैसे पर ज़कात नहीं होती है, ज़कात अजनास पर है, मवेशियों पर है, लिहाजा उसको भी जो है ख़त्म कराया गया कि ज़बरदस्ती जो ज़कात ली जा रही है पैसे पर काटी जा रही है। उसमें फिर तय ये पाया कि शिया जो है वो माह रमज़ान से कबल डिक्लेरेशन अपना साबित करेंगे, जमा कराएंगे कि वो अहले तशी हैं, 12 इमामी 12 इमामी हैं, इसना अशरी शिया हैं, तो उनसे ज़कात नहीं काटी जाएगी। ये दो बड़ी कामयाबियाँ थीं और इसके असरात जो है वो बाद में आने वाले ज़माने पे पड़े। अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन साहब आलाल्लाह मकामहू का इंतकाल होता है और यूँ 1984 में बखर में कायद शहीद अल्लामा सैयद आरिफ हुसैन अल हुसैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह को मुंतखब कायद की उनवान से चुन लिया जाता है। 1986 में, यानी अभी 84 में कायद शहीद क़यादत संभालते हैं और हुकूमत को मुख्तलिफ़ उनवानात से याद दिलाते हैं कि आपको अपने वादों पर अमल पैरा होना चाहिए। चुनाचा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, हुकूमत की मुतअद्दिद बार याद दहानी कराने के बावजूद हुकूमत नोटिस नहीं लेती। इस बिना पर 6 जुलाई 1986 को, यानी उसी दिन, 3 बड़े मुकामात पर, लाहौर में, क्वेटा में और एक और जगह इज्तिमात रखे जाते हैं कि जहां पर लोग आएंगे, जमा होंगे और हुकूमत वक्त को एक वफ्द की सूरत में जाकर अपने मुतालबात पेश करेंगे और याद दिलाएंगे कि ये आपने वादा किया था उस एजिटेशन के नतीजे में, उस माहदे के नतीजे में जो इस्लामाबाद में 1980 में हुआ था। लेकिन हुआ ये कि क्वेटा में दर हकीकत एक हसासियत मौजूद थी और ज़्यादा उम्मीद थी कि इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद और कायदे शहीद की वलवला अंगेज़ क़्यादत के बाद जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा मुनक़द होता और फिर वो पूरे मुल्क में फैल जाता। चुनाचा इसी चीज़ को भागते हुए ज़िया आमरियत ने दर हकीकत क्वेटा में, जहाँ पे ये लोग जमा हो रहे थे, जैसे ही मोमिनीन बाहर निकले वहाँ पर उन पर अंधाधुन फायरिंग की गई, कई मोमिनीन वहाँ पे शहीद हुए और बकिया को गिरफ़्तार किया गया। बदतरीन मजालिम जो है वो ढाए गए, ऐसे अफसोसनाक मजालिम के जिनको बयान करते हुए शर्म आती है। हत्ता कि जो लोग क़ैद में थे उनके साथ जो बहीमाना सलूक इख्तियार किया गया, जो बदअखलाक़ी पर मुश्तमिल रवैया इख्तियार किया गया उन लोगों से, कि उसे कलमबंद नहीं किया जा सकता। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये क्वेटा से मोमिनीन छुट कर आए थे तो अंचोली में एक जलसा मुनक़द हुआ, तो वहाँ पर क्वेटा के एक मोमिन जो क़ैद में थे 6 जुलाई 1986 के, उन्होंने आके जो मजालिम बयान किए हुकूमत के, वो शर्मनाक, इंतहाई कबीह और इंतहाई यानी ज़िल्लत पर मबनी इकदामात थे कि जिनको बयान करते हुए शर्माती। इतने घनावने जराइम जो ज़िया आमरियत के दौर में मिल्लत तशय्यो को बर्दाश्त करने पड़े, वो दौर भी गुज़रा। 1986 में ये सारा मामला होता है और अब पूरे मुल्क में जो है वो असीरा ने क्वेटा को रिहा करो की एक मुहिम चलाई जाती है और ये कहा जाता है कि हम भरपूर एहतजाज करेंगे। और यही वजह है कि 6 जुलाई 1987 को कायद शहीद क़ुरान व सुन्नत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान करते हैं। जिन हजरात ने कायद शहीद अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी की ज़िंदगी और सवाना हयात का मुताला किया है वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये 6 जुलाई 1986 के बाद 1987 के लिए, 87 के लिए जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, ये मूची गेट लाहौर पे था। लेकिन कायद शहीद अपने दोस्तों से कहते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस जो है तारीख़ी, ये मुनक़द होनी चाहिए मीनार पाकिस्तान के जलसा गाह में, जिसमें से कुछ अहबाब मुखालफत करते हैं, कुछ तायद करते हैं, अलगर दिए कि मुत्तफ़क़ा तौर पर तय पाता है। और उसमें फिर तजब्जब का शिकार थे कि हम इतने लोग कहाँ से लाएंगे, अभी कायद शहीद को कितना ही ज़माना हुआ है काम करते हुए, 3 साल हुए हैं, लेकिन इन 3 सालों में कायद शहीद ने वो काम किया है कि जिसको हम बता नहीं सकते। एक मिसाल मैं दूँ, एक हमारे दोस्त थे, वो यहाँ से गाड़ी से गए सिंध के एक शहर, वहाँ से उतर के कच्चे में गए, कच्चे से उतर के वो घोड़े पर या खच्चर पर बैठकर एक दूर अफ्तादा गांव में पहुँचे और वो अपनी जाम में ये तसव्वुर कर रहे थे कि मैं पहला आदमी हूँ जो तबलीग के लिए आया हूँ। लेकिन उन्हें पता चला कि कायद शाहिद 1986 1985 1987 में यहाँ दौरा कर चुके हैं, यानी आज से 4 साल 5 साल कबल, मिसाल के तौर पर एक शख्स इतने वसाइल के साथ एक ऐसी जगह जाता जहाँ तसव्वुर करता कि यहाँ कोई शायद कोई फरिश्ता और नबी आया हो या कोई आलिम आया हो, लेकिन जब वो मालूम करता है तो कहता है यहाँ कायदे शहीद होके जा चुके, कब, 1986 में। कितना फासला है, 30 साल का फासला बन रहा है तकरीबन ये, लेकिन वो शख्स 3-4 साल में इतना काम अंजाम देता है कि वो गली गली, कूचा कूचा, गांव गांव जाके दरवाज़ा खटखटाता है और कौम को मुत्तहिद करता है। ये था कायदे शहीद। लिहाजा लोग तदब्बुर के शिकार थे कि आगा अभी आपको इतना मौका नहीं मिला है, हम कैसे पेट भरेंगे। कायदे शहीद जो एक इरफानी मिजाज रखने वाली शख्सियत है, इरफान दर हकीकत और आपकी मारफत और आपकी रूहानियत और आपका आरिफ होना, इसमें बमुसम्मा होना, वो कुछ और देख रही थी। खुदा से राज़ो नियाज के नतीजे में इमाम वक्त की तायद उन्हें हासिल थी। चनाचा तय ये पाया कि 1986 के मुतालबात की यादावरी और असीराने कोयटा की रिहाई नीज़ शहदाए कोयटा की खून का बदला लेने के लिए जो हम जमा होंगे। और यही वजह है कि 1987 को कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। खुद ये एक बहुत बड़ा धमाका था, इसलिए कि जो उस ज़माने में ज़ै आमरीत के पालतू अफराद तशय्यो में मौजूद थे, माजरत चाहूँगा, जो हुकूमती ज़बान बोलते थे, जो दरबारी उलमा थे, उलमा सू थे, उन्होंने मुखालफत की कि जनाब हमने तो कुरान अहल बैत सुना है, ये कुरान सुन्नत क्या है। हालांकि अगर आप रिवायात को देखेंगे तो कुरान और सुन्नत हो या कुरान और अहले बैत हो, दोनों दर हकीकत अपनी हकीकत और माहियत के लिहाज से एक ही चीज़ है। यानी जो सुन्नत है उसी को अहले बैत बयान करेंगे, और जो कुछ कुरान में बयान किया गया वही सुन्नत में बयान किया गया, सुन्नत से हट कर अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कुछ बयान नहीं किया। चुनाचा मुखालफत की गई शदीद किस्म की मुख्तलिफ उलमा ने, खुसूसन उर्दू बोलने वाले, उर्दू ज़बान से वाबस्ता उलमा ने खुसूसन मुखालफत की, क्योंकि एक कौमियत का मसला उस ज़माने में सिंध में और कराची में उठा हुआ था। उस तनाजुर में उस चीज़ को पेश किया जा रहा था कि ये कौमियत और ज़बान का और रंग व नस्ल का मसला है। लिहाजा न सिर्फ उर्दू बोलने वाले बाज़ उलमा ने, बल्कि मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले दरबारी उलमा और उलमा सू ने कायदे शहीद की मुखालफत शुरू की। लेकिन कायदे शहीद ने कहा इसी नाम से होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हुई और शानदार हुई, तवक्को से ज़्यादा हुई, ऐसी कि जिसने एजेंसी की आंखें खोल दी कि इतना बड़ा इज्तमा इतने कम वसाइल में, इतने कम वक्त में कैसे हुआ। और ये वो मौका था कि जब कायद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मिल्लत तशय्यो की सियासी तहरीक के इब्तिदा का ऐलान कर दिया, रोड मैप दिया पॉलिटिकली शिया कौम को। मेरी दरख्वास्त है उन लोगों से जो पाकिस्तानी समाज और माशरे में इज्तिमाईयत की नफ़ी करते हैं, तंजीमों की नफ़ी करते हैं, उम्मत की बात करते हैं, तंजीमों और जमातों की नफ़ी करते हुए नज़र आते हैं, मैं कहता हूँ 1987 कायद शहीद की तकरीर उठा के देखिए। आप जलसा करने जाते हैं कायद शहीद के मज़ार पर, उनकी जाए शहादत पर, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत अच्छी बात है। आप कायद शहीद की कबर का एहतराम करते हैं, उनकी जाए शहादत का एहतराम करते हैं, उनकी तारीख़ शहादत का एहतराम करते हैं, फ़बेहा बहुत अच्छा माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। मगर क्या कबर का एहतराम करके आप कायदे शहीद के सियासी नज़रियात को पामाल करना चाहते हैं? मेरा सवाल है उन लोगों से कि खुदारा तजदीद नज़र करें कि आप कायदे शहीद की कबर का और नाम को तो एहतराम करें, लेकिन कायदे शहीद के अफकार और नज़रियात को पामाल कर दें, उनको रौन डालें, इंतखाबात की नफ़ी करें, उसको ताहूत करा दें। क्या कायदे शहीद से बढ़कर आप कायद हैं? क्या कायद शहीद से बढ़कर आप अल्लामा हैं? क्या कायद शहीद से बढ़कर आप पाकिस्तानी समाज को जानने वाले हैं? ये सवाल है उन लोगों से और उनके पैरोकारों से और उनकी जमात से और उनको फॉलो करने वालों से कि खुदारा अकल के नाखुन लें, होश के नाखुन लें और तजदीद नज़र करें। लिहाजा कायद शहीद ने वहाँ पर रोड मैप का ऐलान किया तशय्यो के लिए, और जमाती बुनियादों पर पाकिस्तान के इलेक्शन में दाखिल होने के लिए और इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। और ये ख़ुद एक बहुत बड़ा बम था जो फटा पाकिस्तान की सियासत में, और फिर उस ज़माने में जो अखबारात थे, जो तजदीद निगार थे, सब ने जो है उसको लिखा है कि मिल्लत तशय्यो जो है वो अब जमाती बुनियादों पर इलेक्शन लड़ेगी। तहरीक नवाज़ फ़िक़्हे जाफ़रिया ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। ये वो दर हकीकत दिन था कि जिसने 1980 से लेकर 1986 तक ये 6 साल और फिर ये 7वां साल, दर हकीकत मुफ्ती जाफर हुसैन साहब की क़्यादत पर मोहर तस्दीक सब्त की, शहदा की क़ुरबानियों पर मोहर तस्दीक सब्त की, असीरान क्वेटा और दीगर मकामात पे जो असीर हुए थे पाबंद सलासल थे उनकी मजलूमियत मोहर तस्दीक सब्त की, और बताया कि मिल्लत अपने कायद के पीछे तैयार है। तवज्जो रखिएगा, ये है 6 जुलाई 1980 से लेकर 6 जुलाई 1987 तक, और यही वजह है कि दुश्मन अच्छी तरह भाप चुका था और उसका अंदाज़ा हो गया था कि अगर मिल्लत तशय्यो को अब मज़ीद वक्त दिया गया तो ये एक बहुत बड़ा इकदाम उठाकर पाकिस्तानी सियासत में दाखिल होकर बहुत सारी तब्दीलियों का सबब बन सकती है। इसलिए कि पोटेंशली पाकिस्तान और फिर मिल्लत तशय्यो और दूसरी जानिब इस्लामी इनकलाब की कामयाबी और इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैहि की वलवला अंगेज़ क़यादत और इराक जंग में मुसलसल ईरानी आवाम और उनकी फोर्सेस के इस्तेकामत और फतह ज़फ़र ने पूरी दुनिया में हुर्रियत पसंदों खुसूसन पाकिस्तान के मिल्लत तशय्यो में एक ऐसी रूह फूंकी थी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लिहाजा मैंने बताया कि ज़ियाउल हक़ ने किस तरीके से इस आमिर ने तफरक़ा के बीज डाला, लसानियत के बीज डाला, पंजाब में अलग तरीक़े से काम किया, क्वेटा में कौम परस्ती के बीज बोकर वहाँ पे इस्लामी इनकलाब के असरात को ख़त्म करने की कोशिश की, दूसरी तरफ दरबारी मुल्लाओं और उलमा ने दर हकीकत इस ज़िया आमिर की वाह वाह करने शुरू की ताकि जो है ये मसला किसी तरह न्यूट्रल हो जाए और कायद शहीद की जो क़यादत है उसका परचम बुलंद ना हो सके। चुनाचा ये वो फतह ज़फ़र थी कि जिसमें कायद शहीद ने ऐलान किया था, और यही वो चोट लगी थी हुकूमत और उस आमिर हुकूमत पर कि जो मुसलसल दर हकीकत चोटें खा रही थी कायद शहीद की क़यादत से। चुनाचा कायद शहीद को 5 अगस्त 1988 को शहीद कर दिया जाता है, और जैसे कायद शहीद शहादत होते उसके कुछ ही दिन बाद इस ज़िया आमिर को भी जो है वो अमेरिका अपने कारिंदों के ज़रिए से दर हकीकत सफहती से मिटा देता है क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। उसके बाद ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान जो हैं वो मुल्क के सदर बनते हैं और फिर वो एक अलग कहानी शुरू होती है। उसके बाद बेनज़ीर की सियासत का किस्सा और फिर नवाज़ शरीफ और फिर वो सारे सिलसिले शुरू होते हैं। अलगरज़ ये कि मुख्तसर ये कि 6 जुलाई फ़तह ज़फ़र का दिन था, और यही वजह है कि उसी फतह ज़फ़र को लेकर मुख्तलिफ़ लोग मैदान अमल में मौजूद रहे, लेकिन एक वक्त आया कि जो मुंतखबा क़यादत थी वो ओहदा बरआ ना हो सकी, वो कौमी उम्मीदों पर पूरी ना उतर सकी, इस हद तक कि जब डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी की शहादत होती है तो बयान देने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं, इतना खौफ व हिरास था। हत्ता कि क़यादत को लाया जाता है ज़बरदस्ती के आगा साहब आइए, जो आने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद फिर बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, यहाँ तक कि 2011-12 में जब एक नई तंजीम मजलिस वहदत शुरू करती है अपना काम और कराची में एक बहुत बड़ा जलसा मार्च में मुनक़द करती है कि जिसने आंखें खोल दी थी, जिसने एक नई रूह फूंकी थी, अलगर्ज ये कि एक नई तहरीक नज़र आई और लोगों ने उसको वेलकम कहा और अमली तौर पर जो है लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि हम कुछ कर सकते हैं। अभी मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ कि ये मजलिस वहदत मुस्लिमीन किस हद तक कामयाब रही, उसका इकदाम क्या था, ये सब बहुत तूलानी बहसें हैं, मैं इसमें अभी पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि दर हकीकत ये हुआ 2011-12 में जब ये अपने उरूज पे पहुँची तो फिर तहरीक इस्लामी एक दफ़ा फिर जो है वो अपना वजूद साबित करने के लिए लोहा मनवालिक ने मैदान अमल में उठती है और कराची से अपना काम शुरू करती है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी फ़ालियत को तेज़ करती है। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कौमियात के मामले में ये दोनों तंजीमें मौजूद रही हैं, कम उमेश दोनों का किरदार जो है वो हमारे सामने मौजूद है। मैं मुवाजना नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं दर हकीकत एक शक्ल पेश करना चाह रहा हूँ आपके सामने कि ये सिलसिला रहा है। लिहाजा 6 जुलाई का दिन बहुत ज़्यादा अहमियत का दिन है और ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जो कायदे शही से वाबस्ता हैं, خصوصاً ان لوگوں سے کہ جو قائد شہید کے وارثین سے وابستہ ہیں، ان کے فرزندوں سے وابستہ ہیں، یا ان کے فرزند ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں، ان کے علم اٹھانے کے دعویٰ کرتے ہیں. یہ در حقیقت فتح و ظفر اور یہ اعلان اور یہ استقامت اور یہ نصرت اور یہ پائے ثبات میں در حقیقت استحکام کے ساتھ ڈٹ جانا میدان عمل میں، یہ وہ فتح و ظفر تھے کہ جنہیں ملت تشیع نے حاصل کیا اور بہت سارے قلعے فتح کیے. اور یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ زمانہ گزرتا رہا، ہم 6 جولائی کے بھولتے چلے گئے، یہاں تک کہ اب ایک ایسا وقت آیا ہے کہ اسی 6 جولائی کو ایک منحرف ٹولہ، کچھ افراد، ڈمی پپیٹ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ کھڑے ہو کر در حقیقت 6 جولائی کو ایک ایسے موہومی نام سے وابستہ کر کے اس کی تاریخ ساز حقیقت کو صفحہ ہستی سے محو کرنے کے در پہ ہیں. لہذا وہ 6 جولائی کو ولایت علی علیہ السلام کا نعرہ لے کر اپنے بھونڈے کاموں کو شرعی جواز کے ساتھ قومیات کی سطح پر لوگوں کے سامنے لا کر فتنہ انگیزی کرنا چاہتے ہیں، علماء، مراجع، فقہا، علماء حقہ کے خلاف مکتب اہل بیت، تعلیمات اہل بیت کا مذاق اڑاتے ہوئے در حقیقت میدان عمل میں آنا چاہتے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ ہم اس 6 جولائی کو یاد رکھیں جو 1980 ہے، 6 جولائی 1986 ہے، 6 جولائی 1987 ہے. میں آنے والے زمانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نوجوانوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ 6 جولائی کیا ہے اور اس کو کیوں محو کیا جا رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں مغرض، فتنہ گر، خدا و فریب دینے والے، اور مقدس نام سے، ولایت علی کا نام لے کر در حقیقت ملت تشیع کو واپس انہی اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں کہ جن یہ وہ افراد ہیں، وہ فتنہ گر ہیں جن کو بن سلمان کی حکومت منظور ہے، جنہیں نتن یاہو یا اسرائیلیوں کی اور امریکیوں کی جیسے مشرق و کافر اور غیر مسلموں کی ظالم اور خون آشاموں کی حکومت منظور ہے، لیکن کسی سید، عالم، فقیہ، تعلیمات اہل بیت کا پرچار کرنے والے فقیہ کی حکومت منظور نہیں ہے. لہذا یہ وہی نعرہ ہے کہ جو 1980 سے پہلے لگایا جاتا رہا، یعنی دین افیون ہے، سو جاؤ، عزاداری کرو سو جاؤ، نماز پڑھو سو جاؤ، اجتماعی سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تمہارا. یہ وہی در حقیقت چیز ہے جس کو امام خمینی نے باطل قرار دیا کہ دین افیون نہیں ہے، دین محرک ہے، دین بیدار گر ہے، دین بیدار کرنے والا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ قوم کو اسی گڑھے میں دوبارہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مقدس ناموں سے، مقدس لیبلوں سے. لہذا ضروری ہے کہ ہم بیدار ہوں، اٹھیں اور آگاہ ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ میری بات کی بہت زیادہ مخالفت کی جائے گی، لیکن میں یہ سچ کہنے پر اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آپس میں تیار ہوں، متوجہ ہوں، اور یہ دیکھیں کہ اس وقت حالات حاضرہ کیا ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری بنے. لہذا میری تمام نوجوانوں سے درخواست ہے کہ 6 جولائی 1986، 6 جولائی 1980، 6 جولائی 1987 کے سیاسی معرکوں کا مطالعہ کریں، سرچ کریں، اس کو حقیقت کو لے کر آئیں. شیعہ قوم کے در حقیقت اس معرکے میں اس کی اس فتح و ظفر کو اپنی نوجوان نسل کے سامنے بیان کریں، تاکہ ہمارے نوجوان یہ سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے اور یہ 6 جولائی جو آج پیش کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا اسباب ہے. انشاءاللہ مزید اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے آئندہ آنے والی گفتگو میں. انشاءاللہ اس پہ یہی اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین مبین اسلام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرتے ہوئے نظام ولایت فقیہ، نظام ولایت ائمہ سے مربوط یہ نظام ولایت فقیہ ہے، اس کی ترویج و اشاعت کرنے اور امام عصر کے لیے زمین ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.